हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। मान अपमान में सम है, निंदा स्तुति में सम है, और प्रिय अप्रिय परिस्थितियों में भी सम है। ऐसा जिसने जीवन का लक्ष्य बना दिया, जो बुद्धिमान और धीर है वो अपना हुक्म किसी पर थोपते नहीं है। सतशिष्य गुरु पर हुक्म नहीं थोपता और सदगुरु शिष्य पर भी संसारिक हुक्म नहीं थोपते। गीता कही गई लेकिन हुकूमत नहीं, ज्ञान बढ़ाकर यत इच्छसि तत् कुरु। वशिष्ठ मुनि राम जी को भरत के साथ शायद समझाने गए, तब का प्रसंग था। राम जी कहते हैं कि गुरु महाराज दो दिन बीत गए हैं, और आज तीसरा दिन है, किसी ने अन्न जल नहीं लिया है, प्रणाम करके बैठ गए। ऐसा नहीं कहते किसी ने अन्न जल नहीं लिया है आप थोप जाओ, अथवा आप आज्ञा कर दो, इनको कह दो, ऐसी आज्ञा गुरु को नहीं करी जाती। दो दिन से अन्न जल नहीं लिया, तीसरा दिन शुरू हुआ है, भगवान प्रणाम करके बैठ गए। ऐसा नहीं कहा कि तीसरा दिन शुरू हुआ है इनको छुट्टी कर दो। अगर कहते हैं तो गुरु के ऊपर आज्ञा करने का दोष लगता है। कौशल्या, सुमित्रा और जनकपुर से आई हुई सीताजी की मां वार्तालाप करते करते काफी देर हो गई, लेकिन कौशल्या यूं नहीं कहती कि देर हो गई तुम सो जाओ, ये तो आज्ञा करना हुआ। कौशल्या जी ये याद दिला रही है सुमित्रा के तरफ संकेत करके। बेवन को तो कहना ठीक नहीं, सुमित्रा को कह रही कि रात के दो पहर बीत गए हैं, रात के दो पहर बीत गए हैं, मतलब 12 बज गए हैं। 12 बज गए हैं तो क्या करना चाहिए वो आप ही समझ ले सब लोग। मन के आज्ञा में चलना और अपने मन की आज्ञा दूसरे पर थोपना, ये अज्ञानियों का लक्षण है, सत शिष्यों का लक्षण नहीं। मन के पार पहुंचकर सत शिष्य का उत्थान करने के लिए गुरु आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, और आज्ञा वही देते हैं कि वो जो कर सकता है, जिससे उसकी सुरक्षा होती। एक मुखिया का लड़का था, मुखी नो छोकरो हतो, बाल विवाह नो जमानो हतो। मुखी नो छोकरो बाल विवाह माटे मुखी ने सगाई करावी, परणावा माटे नी तैयारियो थई, शरणाईओ वाजवा लागी, नगारा ने तुरियो वागवा लागी। छोकरा ने खोड़ामा बेसी मुखियो लगन विधि में पहुंचवानी तैयारी करे छे। तो बंदरिया नचाने वाला कोई आ गया तो मुखिया का लड़का कूद का मार के भाग गया बाहर। अब बाप तो शादी कराता है और लड़का माकड़ा जुआ जाए छे, मारे माकड़ा जुआ जो छे, मैं बंदरियों का नाच देखने जाता हूं। अरे रुक तो सही, कि नहीं मैं बंदरियों वाला आया है, बहुत बंदरियां लाया, बंदरियों का नाच देखने जाता हूं। अरे तेरी शादी हो रही है, फेरा फिरना है क्यों, तुम कर लेना फेरा, तुम फेर लेना, मैं तो बंदरियों का नाच देखने जाता हूं। ऐसे ही कभी कभी मनमुखता गुरु जीव ईश्वर की शादी मिलन कराता है, लेकिन शिष्य का मन संसार रूपी बंदरियों का मेला देखने भाग जाता है। गुरु बोलता है बैठ जरा, रुक जरा, ध्यान करके उमार तो माकड़ा जुआ जो छे। इसलिए गुरु के साथ या इष्ट के साथ हाथ मिलाने का मतलब है कि वे जिस प्रकार से प्रसन्न हो वैसा स्वभाव बनाना। हाथ तो जरूर मिलाना लेकिन साथ साथ में दिल भी मिलाए जाना, जय राम जी की। और दिल मिलाना ऐसा नहीं जैसे दो दोस्त दिल मिलाते हैं, अथवा जैसे एक्टर लोग दिल मिला के दिखा देते हैं, ऐसा नहीं। दिल मिलाना माना गुरु के दिल में जो सत्य ज्ञान अनंत उन ब्रह्म का वास है, वही गुरु के दिल का वास मेरे दिल में हो जाए, ऐसे भाव करना ही गुरु के साथ दिल मिलाना है और हाथ मिलाना है। महाराज चैतन्य महाप्रभु 7 वर्ष के थे, नंदिया गांव एक संतों का गढ़ हो गया था चैतन्य महाप्रभु के कारण। काशी से एक पंडित आए, दुरंधर विद्वान, उस जमाने के माने हुए। गौरांग 7 वर्ष के थे और पंडित के दर्शन करने गए। उन्होंने पंडित से दिल मिलाना चाहा। पंडित को कहा कि पंडित जी कुछ मुझ जैसे बच्चे को भी सुना दीजिए। पंडित ने कहा तू क्या सुनेगा 7 वर्ष का हमारा शास्त्र। बोले महाराज जैसा मैं सुन सकूं वैसा ही बता दीजिए। फिर लड़के की भाषा में मधुरता थी, जिसके साथ बोलते वो बड़ा है छोटा है पराया है ऐसा है वैसा है अच्छा है बुरा है मत सोचो, वो तो मेरा राम जी है, ऐसा समझकर तुम बात करोगे तो पंडित होगा, चाहे पंडित का और कोई पंडित होगा राजी हो जाएगा। ये दिल मिलाने की तरकीब है। नारायण नारायण नारायण, देखो दिल मिलाए जा रहे। नारायण 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 नारायण, नर में नारी में जो बस रहा है वो मेरा नारायण ही तो है। जैसे तुम वृक्षों के तरफ, किलहोल करते हुए पक्षियों के तरफ और गुंजन करती हुई सरिताओं के तरफ और उछल कूद मचाकर आह्लाद पैदा करने वाले सागर के तरफ जितना प्यार से देखते हो, ऐसा ही प्राणी मात्र के प्रति प्यार से देखो, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। ये दिल मिलाने की तरकीब है। महाराज नंदिया गांव में आए हुए उस प्रसिद्ध भट्ट जी से 7 वर्ष के गौर वर्ण के बालक थे, इसलिए उनका नाम गौरांग पड़ गया। जैसे प्रह्लाद के 3 भाई बड़े थे, चौथा प्रह्लाद था, लेकिन प्रह्लाद का रूप लावण्य बड़ा अद्भुत था, बस देखते ही बनता था। प्रह्लाद के बड़े भाई का नाम अल्हाद था, दूसरे का अनुहलाद, तीसरे का सहलाद और चौथे का प्रह्लाद। अहलाद अनुहलाद सहलाद और प्रह्लाद। प्रह्लाद जब 5 वर्ष के हुए, वो जमाना था कि स्कूल और कॉलेजों में सर्टिफिकेट पाने के लिए विद्यार्थियों को नहीं भेजा जाता था, लेकिन वो विद्या पाने के लिए भेजा जाता था कि जो विद्या ऐहिक और परमार्थिक सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, वो विद्या पाने के लिए गुरु आश्रमों में पढ़ने को रखा गया जाता था। शुक्राचार्य के आश्रम में भेजना था, उस समय शुक्राचार्य यात्रा को गए थे। शुक्राचार्य के 2 पुत्र छंद और अमर, उसको हिरण्यकश्यपु ने बुलाया और आदेश दिया कि इस बच्चे को पढ़ाई पढ़ाई में ऐसे संस्कार इसके कानों में भर दो कि मेरा जो शत्रु है ना, विष्णु नाम नहीं लिया, वो मेरा जो शत्रु है ना, समझ गए, बस उसके प्रति इसकी कड़ी नफरत हो जाए। बोले राजन आप निश्चिंत रहो। प्रह्लाद को ले गए गुरुकुल में, पहले स्वर का ज्ञान बताया गया, फिर वर्णमाला क ख शुरू हुआ। प्रह्लाद क में रुक गया, क तो कृष्ण का नाम है, कर्षति आकर्षति। अब आगे क्या पढ़ना, पहले इसको ही पढ़ लूं। कथा बड़ी रोचक है और हर विद्वान अपनी शैली में अपनी रोचक भाषा में अपने रंग ढंग से कहता, लेकिन प्रह्लाद की जो निष्ठा थी वो बेजोड़ थी। और बुद्धिमानों का, योगियों का, ज्ञानियों का मानना है, मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि आप लक्ष्य ऊंचा बना दीजिए, वो वस्तु होगी तो अवश्य मिलेगी, नहीं तो तुम्हारे मन से वो वस्तु बनकर तुमको जरूर मिलेगी, इसलिए आप लक्ष्य बनाने में कोर कसोर मत रखो। समझो आप एक सृष्टि बनाना चाहते जो इस सृष्टि से बिल्कुल निराली, और आप एकाग्र हो तो आप अपनी मन चाही सृष्टि भी बना सकते। आपके मन में अथाह शक्ति है, क्योंकि आपका मन परमात्मा तत्व से, अंतर्यामी विश्वनीयता से स्फुरित होता है। इसलिए लक्ष्य ऊंचा होगा, वर्षगांठ के दिन पर आप लक्ष्य ऊंचा बना दीजिए तो छोटी छोटी चीजों में आप दिल मिलाएंगे नहीं। अगर लक्ष्य ऊंचा नहीं है तो छोटे से लाभ हानि में, छोटे से मान अपमान में आपका हृदय न जाने मदारी की डुगडुगी की नाई न जाने कितनी बार डुगडुग करता रहेगा। इसलिए जीवन में लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। ऐसा ऊंचा लक्ष्य बना दो कि छोटी मोटी बातें तो डे कर दो। डे की भी एक कथा है जयराम जी की। किसी आदमी ने कोर्ट में लड़ने के लिए वकील किया, केस ऐसा था कि जरा वकील को नई युक्ति सूझी। वकील ने असील को समझाया कि तू थोड़ा सा पागल होने का नाटक कर ले तो छूट सकता है, नहीं तो नहीं छूटेगा। उसने जब चालबाजी करके तेरे को फंसाया है तो चालबाजी से ही निकलना पड़ेगा। बोले क्या करना है? बोले जज कुछ भी पूछे तो तू कहना डे, वादी प्रतिवादी कुछ कहे बोलना डे, मैं भी कुछ पूछू बोलना डे, दो पांच मुद्दते पड़ेगी और मैं जज के मस्तिष्क में ये बात फंसा दूंगा कि ये बेचारा ऐसा ही भोला आदमी, तो केस जीत लेगा। एक मुद्दत पड़ी, बातचीत हुई, कोई भी प्रश्न आए कि तू हमारे घर से गुजरा था और ऐसे पैसे लिए थे, बोले डे, जज बोलता आप इनको पहचान, तो बोले डे, तुम्हारा झगड़ा हुआ था और तुमने इसको मुक्का मारा, बोले डे, डे के सिवाय दूसरा उसने कुछ सीखा ही नहीं। एक मुद्दत, दो मुद्दत, चार मुद्दत, पांच मुद्दत, महाराज आखिर वकील ने जज के मस्तिष्क में यह बात बिठा दी कि क्यों बिचारे डे वाले को परेशान करना। न्यायाधीश ने उसको बरी कर दिया, केस फाइल करवा दी। निकले बाहर, वकील बोलता फी लाओ, बोले डे, अब तू भी डे ले जा। तो वेद भगवान शास्त्र कहते हैं ये जगत मिथ्या है, नश्वर है, असार है, इसको बिठाने जैसा नहीं है। अर्थात डे 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 करके जब तुम छूटने के करीब हो जाओ, कोर्ट के बाहर आ जाओ, फिर ये रटे हुए शास्त्र और वेद और पुराण की ऋचाएं उनको भी वकीलों को भी डे करके एकदम जीवन मुक्त होकर विचरते रहो। वेद भी अपनी आज्ञा तब तक रखता है जब तक अज्ञान है, जब अज्ञान घट गया तो वेद कहता है कि हमको भी छोड़ दो, तुम हमसे भी आगे जाओ। पिता तब तक उंगली पकड़ता है जब तक हमारे पैर लथड़ाते हैं, जब हमारे पैरों में बल आ गया तो पिता छोड़ बोलता है अब मेरी भी उंगली मत पकड़ो और मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम स्वतंत्र। ऐसे गुरु शास्त्र और वेद तुमको परम स्वतंत्र करना चाहते हैं, न कि तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन सदियों की आदत है मन की गुलामी की, खान पान की गुलामी की, काम क्रोध की गुलामी की, उन गुलामियों को मिटाने के लिए शास्त्र और गुरु की गुलामी स्वीकार की जाती है। वो गुलामियां जब मिटती है तो गुरु और शास्त्र कहता है कि हमने भी तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, ये वेदांत शास्त्र की परंपरा है, वो गुलामी की सब जंजीरें संकेल लेता है। महाराज तो पंडित के पास आए, जो पंडित नंदिया गांव में आए, शास्त्रार्थ होने वाला था। तो 7 वर्ष के बच्चे ने कहा कि पंडित जी आपकी खूब कीर्ति सुनी है, आप कुछ मुझे सुना दीजिए शास्त्र का अमृत। उसने कहा तू क्या बच्चा सुनेगा, लेकिन ऐसी मधुर वाणी थी कि पंडित देखता रह गया। गौरांग ने कहा कि मैं जो सुन सकूं वही सुना दीजिए। बोले तू सुन सके समझेगा? बोले जैसा मैं समझ सकूं वही सुना दीजिए, आप तो महान पंडित हैं। बोले अच्छा तो मैं गंगा स्तुति अपनी रची हुई तुमको सुना देता हूं। नमस्ते तू गंगे वगैरह। ओ पंडित ने अपनी गंगा स्तुति सुना दी, अपनी रचना। गौरांग ने कहा अब आप इसमें क्या गुण और क्या दोष है वो बता दीजिए। भट्ट पंडित कहते हैं कि दोष What you say, Mr. Little Boy? ये तू क्या कहता है नन्ने मुन्ने? मैं कश्मीर और काशी का प्रसिद्ध पंडित हूं, मेरी कृति में गलती नहीं होती, दोष नहीं होता, और गुण तो तुम देख ही रहे हो। बोले अगर आपकी कृपा से मैं इसके दोष बता दूं तो पंडित की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। बोले दोष इस कृति के, इस भजन के, संस्कृत की रचना में दोष? हाँ बता दूं आपकी आज्ञा हो। बड़े नम्र भाव से गौरांग ने कहा पदच्छेद कहां कहां ग्रामरिकल और कहां कहां गलती है वो बता दी, युक्ति युक्त बात बता दी, पंडित जी का सिर नीचे हो गया। 7 वर्ष का नंदिया गांव का बच्चा अगर मेरी गलतियां बता सकता तो कल नंदिया गांव का कोई पंडित भर सभा में मेरा नाक काट के हाथ में रख दे तो क्या हाल होगा। बड़े शर्मिंदे हुए, बच्चा तो चला लेकिन रात भर पंडित को नींद नहीं आई। प्रभात को गौरांग के घर आए और बोले कि मेरे कल्याण की बात कुछ सुना दो आप। मैं माना हुआ पंडित हूं लेकिन लोगों का माना हुआ हूं, तुम लोकेश्वर के माने हुए हो इसलिए तुम्हारे दिल की बात मेरा कल्याण करेगी। जो लोकेश्वर के माने हुए उनके साथ दिल मिलाने को कह रहा हूं, ऐसा नहीं किसी सहरा बानू से दिल मिलाने की बात होती। दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है, जाम हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है। वो हक के जामे जो भर के पिलाएं, ऐसे आत्मरामी संतों के साथ अथवा आत्मस्वरूप शिव स्वरूप अपने इष्ट के साथ गुरु के साथ अपना अंतःकरण मिलाने का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन बंद कमरे में 5 मिनट कीर्तन करना चाहिए जिससे छुपी हुई तुम्हारी प्रेमा शक्ति ज्ञान शक्ति भक्ति की भावनाएं निखर आए और तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि हो और तुम्हारे जीवन में निखालसता और सरलता का साम्राज्य प्रतिष्ठित हो जाए। 5 मिनट आप हरि के नाम का कीर्तन नहीं कर सकते तो फिर दुनिया में और क्या करना है तुमको। 5 मिनट ईमानदारी से तुम नाचो, अरे नाचना न आए तो कैसेट चालू करके हिशो हिशो तो करो। नृत्य तुम्हारे अंदर ज्ञान की धबकता को और प्रेम के प्रसाद को। महाराज गौरांग ने जब गलतियां बता दी, दूसरे दिन पंडित जी गौरांग को बोलते कि मेरे कल्याण की बात आप बताइए। बोले मैं तो बच्चा हूं फिर भी आप पूछते हैं तो बताता हूं कि आप शास्त्रार्थ करना छोड़ दीजिए। शास्त्रार्थ करेंगे तो सामने वाले के अंदर छुपा हुआ भगवान नहीं देखेगा लेकिन उसके अंदर का दोष कौन सा और उसको गिराने की आदत, अगर वो गिर गया तो अहंकार पुष्ट हो गया और वो जीत गया तो तुम्हारे को विषाद होगा। इसलिए इससे तुम्हारा चित्त चैतन्य स्वरूप परमात्मा के प्रसाद से वंचित होगा और माया का बच्चा बन जाएगा, मंकी ब्रांड हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी बात में दुखी और थोड़ी थोड़ी बात में सुखी। ये मंकी ब्रांड चित्तों की निशानी है। मंकी ब्रांड समझते हैं, वांद्रा छाप चित्त, जरा जरा आत्मा दुखी थी जाए, जरा जरा आत्मा हर्षित थी जाए, जरा जरा आत्मा उनके अंतर का कोई स्टैंड नहीं। एक बात तो यह कि आप शास्त्रार्थ करने के लिए किसी को नीचा दिखाने के लिए शास्त्र का उपयोग न करें। दूसरी बात कि आप हरि नाम का प्रेम से कीर्तन करें, बस हरि के होकर। जाने माने कश्मीर के वह भट्ट पंडित गौरांग की बात सिरोधार करके अपने जीवन को मोड़ दिए। वो गौरांग जब आगे बढ़े हरि बोल करते हुए वो आगे बढ़े, विद्वान हुए, न्याय शास्त्र वगैरह के स्कूल चलाते थे लेकिन एक बार दर्शन करने गए, भगवान के दर्शन करते करते उनका दिल भगवतमय हो गया, भगवान के साथ उन्होंने अपना दिल भगवान के चरणों में मिला दिया। अब वो घर आए नंदिया में तो पढ़ने लिखने को जी नहीं करता, विद्यार्थी आए कि मास्टर साहब परीक्षा करीब आ रही है पढ़ाइए, बोले आप दूसरे कोई मास्टर से पाठ लगा लो, नहीं इतना प्यार से और कौन मास्टर पढ़ाएंगे, गुरुजी आप ही पढ़ाओ। बच्चों का खूब आग्रह था, गौरांग पढ़ाते हैं। कि ये कपड़ा है, कपड़े का कारण ताना बुना है, ताना बुना का कारण रुई है, रुई का कारण पृथ्वी है, पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण तेज है, तेज का कारण वायु है, वायु का कारण आकाश है, आकाश का कारण महतत्व है, महतत्व का कारण प्रकृति है, प्रकृति का कारण परमात्मा है, परमात्मा को जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। विद्यार्थी बोलते ऐसा अगर हमने परीक्षा पेपर में लिखा तो हमको रेड क्रॉस मिल जाएगा, बोले इन पेपरों में तो रेड क्रॉस हो सकता है लेकिन वहां तुम पास हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस यहां की परीक्षा में रेड क्रॉस नहीं दिलाना चाहता हूं, यहां की परीक्षा में तुम्हारे अच्छे नंबर आए ऐसा मैं चाहता हूं। तो ध्यान के द्वारा अथवा ध्यान में जो समय जाता है वो समय हमारी पढ़ाई लिखाई को कमजोर नहीं करता, अपितु हमारी एकाग्रता पढ़ाई लिखाई में मदद रूप हो जाती, हमारी एकाग्रता धंधे व्यवहार में मदद रूप हो जाती, अरे हमारी वो एकाग्रता परमात्मा को पाने में भी काम देती है। तो संसार की नश्वर चीजों में काम दे तो क्या बड़ा आश्चर्य। गौरांग पंडित बने लेकिन देखा के चतुराई चूल्हे पड़ी पूर पर्यो आचार, ओम होम होम होम। जीवन शक्ति के विकास की एक शर्त यह भी है कि निश्चिंत रहना, चिंता को महत्व न देना। दूसरी शर्त यह कि सदैव प्रसन्न रहना, और तीसरी शर्त यह है कि न डरना और न किसी को डराना। चौथी शर्त यह है कि जब डरने का मौका आए तो जीव तालू में लगा देना। और पांचवी शर्त यह है जीवन शक्ति के विकास की कि जिन करणों से साधनों से जीवन शक्ति का विकास हो उनको मित्रवत स्वीकार करना, उन साधनों को। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने चित्र को आलिंगन कर रहे थे, खूब प्यार कर रहे थे और छाती से लगा रहे थे। शिष्यों को खतरा पैदा हो गया कि गुरु महाराज ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ही लोग बोलते कि थोड़ा से पागलपन का असर है और आप फिर अपने फोटो को प्रणाम कर रहे हैं, अपने फोटो के पैर छीर रहे छू रहे, अपने फोटो को आलिंगन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, ये क्या। रामकृष्ण ने कहा कि ये मेरा फोटो नहीं है, जिस क्षण मैं खो गया था और मेरा मालिक छलका था उस समय का है, उसलिए मुझे प्यारा लग रहा है। तो जब ब्राह्मी अवस्था में महापुरुष होते हैं उस क्षण का जो उनका चित्र होता है, परमात्मा अव्यक्त है, ब्रह्म तो अव्यक्त है, उसको हमने देखा नहीं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्म जिस दिल में प्रकट हुआ है, ऐसे दिल जिस शरीर में रहते हैं उनका चित्र देखने से हमारी जीवन शक्ति का विकास होता है। कबीर से किसी ने पूछा क्या आप निर्गुण निराकार परमात्मा की बात करते हैं, जो निर्गुण है निराकार है, रूप न रेख न रंग कछु, प्रभु त्रय गुणाते भिन्न, उसमें कोई रूप नहीं रंग नहीं कोई गुण नहीं, तीनों गुणों से भिन्न, उस भगवान को हम कैसे जाने। नानक जी ने कहा रूप न रेख न रंग कछु, प्रभु त्रय गुणाते भिन्न, जिसे बुझाइए नानका सो होवे प्रसन्न। जिसको उसका पता चल जाए उसके दिल की प्रसन्नता सदा के लिए बनी रहती। कबीर जी से किसी ने पूछा कि ऐसे भगवान को कैसे जाने अलख को। कबीर ने कहा अलख पुरुष की आरसी, साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में तू लख ले, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। इस बात में जरा भी संदेह नहीं कि सुबह एक भिखारी निकलता है लोबान लेकर, हर दुकान पर धूप करता है और बिन मांगे आशीर्वाद बरसाता है 10 पैसे में, खुदा ताला रोजी रोटी में बरकत दे, खुदा ताला करे लखपति हो जाओ, लेकिन कैबिन वही भाड़े की और वही पुराना म्युनिसिपैलिटी का प्रॉब्लम चाल। लेकिन ऐसे भी महापुरुष होते हैं, अच्छा जाओ जा हो जाएगा, छनाछन हो जाता है, टनाटन हो जाता है। नरेंद्र आए रामकृष्ण के पास आर्थिक मुझवण के लिए, ये घर में अन्न धन की जरा कमी है, अन्न वस्त्र की आप आशीर्वाद दे दो। रामकृष्ण ने कहा ये नश्वर चीजों के लिए मैं मां को प्रार्थना नहीं करता, तुम ही कर दो, मैं तो मां को देखा नहीं, भगवान आप ही मां को देखें, मां आपसे मिलती है बात करती है, आप ही कह दो। रामकृष्ण ने कहा नहीं नहीं आज मंगल का दिन है, तुम जाओ पूजा करो मां तुम्हें मिलेगी। गए मां का दर्शन किया, अब इष्ट के दर्शन मूर्तियों के दर्शन में सद्कामना है तो जीवन शक्ति का विकास होता है, रोमांच हो जाता है। महाराज मां के दर्शन करते करते भक्ति भाव से भर गए, जीवन शक्ति का कुछ विकास हुआ, अन्न वस्त्र की जो भीख मांगनी थी उसकी जगह पर मां से मांगा मां मुझे ज्ञान दे, मुझे भक्ति दे, मुझे वैराग्य दे। पूजा करके बाहर आए, रामकृष्ण ने कहा क्या मांगा, बोले मैंने तो ये चीजें मांगी, भक्ति वैराग्य ज्ञान प्रेम। बोले फिर अन्न वस्त्र की कमी है, घर में तकलीफ है तो पता नहीं, जा फिर से पूजा करो मांगो। फिर से गए तो फिर से भी यही मांग लिया, तीसरी बार गए तो तीसरी बार भी यही मांग लिया। मां के दर्शन करते हुए उनका रोमांचित हो जाते, हृदय भर आता था और सच्चे हृदय से प्रार्थना करा कि मां मुझे प्रेम दे, शुद्ध प्रेम दे, भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, त्याग दे। बाहर आए, रामकृष्ण मिले, क्या मांगा? बोले मैंने तो वही मांगा। रामकृष्ण ने कहा तुम्हारे घर में ये तकलीफ है? फिर बोले वो चीजें तो आप भी दे सकते। रामकृष्ण ने कहा अच्छा जाओ, अन्न और वस्त्र का तुम्हारे कुटुंब को टोटा नहीं पड़ेगा। इतना ही कह दिया और उनको टोटा नहीं पड़ता, लेकिन हर रोज लोभान का धूप करके दसिया ले जाता है, बीड़िया फूंकता है वो भिखारी, और रोज आशीर्वाद देता है, फिर भी वो बेचारा 3% पैसा लाकर 2% पैसा लाकर ब्याज भर भर के उसकी केबिन गिरवे में बिक गई केबिन बेचारे की। तो व्यक्ति तो वो भी है जो एक रामकृष्ण के रूप में दिख रहा है, और व्यक्ति तो वो भी है जो सुबह दुकान पर धूप कर रहा है। फर्क यह है कि उन्होंने एकांत में ध्यान किया है, अपनी जीवन शक्ति विकसित की है, इसलिए उनका वचन ईश्वर का वचन हो जाता है। और उसने अपनी जीवन शक्ति को 10-10 पैसे में बिखेर दी है, बेच दी है, बीड़ी फूंकने में हरास कर दी है, इसलिए उसके होलसेल में आशीर्वाद भी रिटेल का काम नहीं करते। तो जीवन शक्ति का जिन कारणों से विकास हो उसका उपयोग करना चाहिए, और जिन कारणों से जीवन शक्ति का हरास हो उन कारणों को जानकर वर्ष गांठ के दिन निर्णय करना चाहिए कि ये कार्य और कलाप क्रियाएं न करूंगा जिससे मेरी जीवन शक्ति का हरास होता है, और ये कार्य करूंगा जिससे मेरी जीवन शक्ति का विकास होता है। महाराज बात बता रहा था मैं गौरांग की। गौरांग विद्वान हुए लेकिन देखा कि हृदय का रस तो प्रकट नहीं हुआ, वे करताल लेकर सड़कों पर निकल पड़े, हरिबोल करके कीर्तन करते थे, और उनके कीर्तन करते करते प्राणोत्थान हुए, कुंडलनी शक्ति जागृत हुई। हर मनुष्य के अंदर वो जीवन शक्ति छुपी है, 2-4-5% विकसित है, साधारण आदमी के नहीं, वो जीकर चले जाते हैं। जिसके कुछ परसेंटेज अधिक विकसित होते हैं वे समाज में जिस क्षेत्र में होते हैं ऊंचे पहुंच जाते हैं। तो गौरांग की वो जीवन शक्ति, कुंडलनी शक्ति, महामाया जिसे आद्य शक्ति भी कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता के 6th अध्याय में इसका वर्णन किया है। इतर योगी और भक्त आड़े टेढ़े मार्ग से जाते हैं, जब कुंडलनी शक्ति जागती है तो राजमार्ग से चलते हैं और उनकी स्वाभाविक यात्रा होने लगती है। दूसरा ध्यान तो किया जाता है लेकिन गुरु कृपा होती है या अपना पुरुषार्थ से वो कुंडलनी शक्ति, जीवन शक्ति का खजाना जागृत होता है, तब वो साधना साधक से स्वाभाविक होने लगती है। 12-12 वर्ष एकांत में जप तप करने के बाद कुंडलनी शक्ति जगाकर वो योगी ठीक यात्रा करता है, और वही सत्संग में और वातावरण में संप्रेक्षण शक्ति के द्वारा अगर प्राणोत्थान हो जाए और कुंडलनी जाग जाए तो साधक के 12 वर्ष का परिश्रम बच जाता है और उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। नीलाचल पर्वत की ओर से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में एक तालाब था, उस तालाब में घुटने भर पानी में खड़ा एक धोबी कपड़े कूट रहा था। कपड़े तो क्या कूट रहा था, वो अपनी जिंदगी कूट रहा था, जय राम जी की, वो अपनी जिंदगानी कूटे जा रहा था। कोई बोलता मैंने लकड़ा बेचा, कोई बोलता मैंने कपड़ा बेचा, कोई बोलता है मैंने ये बेचा, लेकिन ये नहीं समझता कि तू जिंदगी बेच रहा है। लकड़ा कपड़ा तो आता रहेगा लेकिन तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो फिर नहीं मिलेगी। मैं टीवी बेचता हूं, मैं रेडियो बेचता हूं, मैं कपड़ा बेचता हूं, मैं लकड़ा बेचता हूं, लेकिन बेटे ये याद रख तू जिंदगी बेच रहा है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं केक बेचता हूं, नहीं ये तो बिकते हैं लेकिन उसके साथ हमारा समय बिका जा रहा है। गौरांग ने देखा कि कपड़े कूट रहा है, जिंदगी कूट रहा है अपनी, ऐशो ऐशो कर रहा है, ऐशो ऐशो में अगर हरी हरी कर दे तो इसका बेड़ा पार हो जाए। महाराज दयालु संत का चित्त पिघला है, भक्तों को आंखों के इशारों से दूर संकेत कर दिया, और वे गौरांग तालाब के करीब आए हैं और धोबी को उद्देश्य के बोलते हैं कि भैया ये कपड़े कूट रहा है, एक बार हरिबोल तो कह दे। धोबी तो सिर नीचे और कपड़े कूटता हुआ बोले जा जा बाबा, तारा जो कौन था, मैं हरिबोल नहीं करने वाला। गौरांग को निश्चय हो गया कि हो गया ग्राहक पक्का, हरिबोल नहीं करने वाला इस बहाने भी कर दिया, कुछ तो शुद्धि हो गई। गौरा ने कहा तू हरि बोल नहीं करेगा ऐसा क्यों, मैं तो तेरे को करवा के ही जाऊंगा। जब इनकार वाले को चिढ़ाया जाता है तो इनकार के बल से भी वो आमंत्रण अपने हृदय में भर देता है। कभी घर में खटपट हो ना तो छोटी छोटी खटपट चलती रहे तो लंबा समय चले, जो खटपट है ना उसको ऐसी उत्तेजना दो कि खटपट भड़का होकर शांत हो जाए। रामायण का एक प्रसंग याद आता है कि बाली को राम जी ने सुग्रीव की मित्रता के बाद बाली के उछलंकपने को और उसके करतूतों को देखकर राम जी ने शपथ उठाई कि बाली को मारूंगा। बाली मरे तो तारा आई रोती रोती, सीरियल में जैसा दिखाते ऐसा नहीं, उससे कुछ विचित्र हुआ होगा। जय जय। वो तारा कहती है कि मेरे पति को आपने मार दिया, रो रही है। राम जी कहते हैं शीति जल पावक गगन समीरा, शीति मना पृथ्वी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच भूतों से शरीर बना है, वो तो तेरे आगे खड़ा है। शीति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तनु तव आगे सोहा, जीव नित्य तू कह लगी रोवा। पंच भौतिक नश्वर शरीर तेरे आगे पड़ा है ये, और उसका जीवात्मा अमर है, तू क्यों रोती, किस कब तक रोएगी, रोने का क्या कारण। अब आगे चलो, जब मेघनाथ लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं और राम जी विलाप करते हैं कि भाई लक्ष्मण मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, भाई लक्ष्मण मैं सुमित्रा को क्या कहूंगा, हाय लक्ष्मण हनुमान जी तुम जल्दी जाओ औषध ले आओ हम उपचार करेंगे। उस समय तारा आ जाए और राम जी को कहे कि मेरे मिस्टर जब चल बसे तो तुमने कहा कि पंच भौतिक शरीर यहां पड़ा है और जीवात्मा अमर है, मेरे मरे हुए पति के वक्त तो तुमने कहा जीवात्मा अमर है और तुम्हारे मूर्छित भाई के लिए तुम आंसू सार रहे, क्या बात। तो राम जी के पास क्या जवाब था, तारा ना समझी से रो रही थे, मोह से रो रही थी, और राम जी मर्यादा स्थापित करने के लिए समझ कर रो रहे थे। जो समझ के रोता है उसको रोने का दुख नहीं होता है, जो ना समझी से रोता है उसको दुख होता है।